इनाया को डॉक्टर की बात याद आ गई। पहले उन्होंने इनाया को मिलने की इजाज़त दे दी थी, लेकिन जैसे ही वो आईसीयू में उससे मिलने पहुंची, उसकी आवाज़ मानव के कानों के रास्ते उसके दिमाग तक पहुंची, उसकी कंडीशन बिगड़ने लगी। डॉक्टर, नर्स सभी घबरा गए। इनाया को तुरंत बाहर निकाला गया। डर तो वो भी गई थी। कांपते कदमों से वो बाहर आई और निढाल से चेयर पर गिर गई। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि अब कंडीशन स्टेबल है, लेकिन अभी वो किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकते। ज़रा सी लापरवाही भी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए अब किसी को भी पेशेंट से मिलने की परमिशन नहीं है। तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक उसे होश नहीं आ जाता। इनाया अनीता जी के साथ उठकर आईसीयू के गेट के पास आई और उस छोटे से कांच से झांककर अंदर हॉस्पिटल बेड पर बेचैन से पड़े मानव को देखने लगी। इनाया की आंखें एक बार फिर भीगती चली गईं। अपने बेटे को इस हालत में देखकर दुखी तो अनीता जी भी बहुत थीं, परेशान भी थीं, उन्हें उसकी चिंता भी हो रही थी, लेकिन इनाया की हालत देखकर उन्हें उस पर तरस आ गया। वो तो सोच भी नहीं सकती थीं कि क्या गुजरी होगी उस पर, कैसे उसने सब सहा होगा। अनीता जी ने इनाया के लिए अपनी भावनाओं को छुपा लिया, खुद को संभाला, क्योंकि उन्हें इनाया को संभालना था। बस बस बेटा, शांत हो जाओ, मनु को कुछ नहीं होगा। ये मुश्किल वक्त है, बप्पा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। जैसे अच्छा वक्त गुजर गया, ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं होगा मनु को, आज तक हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, देवा हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा, सब ठीक हो जाएगा। अनीता जी उसे अपने सीने से लगाए समझा रही थी, लेकिन इनाया के आंसू थम नहीं रहे थे। उसकी वजह भी वो उन्हें नहीं बता पा रही थी, बस अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। वो काली अंधेरी रात जिसने कई रिश्तों को तोड़ा था, इनाया की जिंदगी तबाह की थी, बीत चुकी थी। सुबह हो चुकी थी। आईसीयू में मॉनिटर की बीप बीप लगातार चल रही है, जैसे कोई दिल की धड़कन गिन रहा हो। मानव बेड पर लेटा था, ऑक्सीजन मास्क अभी भी लगा हुआ था। आईवी ड्रिप धीरे धीरे टपक रही थी। चेहरे की चोटों पर बैंडेज लगा था, सूजन थोड़ी कम हो गई थी। उसकी सांसें अब पहले से ज़्यादा नॉर्मल चल रही थीं, लेकिन शरीर अभी भी भारी लग रहा था। उसे अभी तक होश नहीं आया था। अनीता जी वॉशरूम गई थी। इनाया वहीं चेयर पर बैठी शून्य में ताक रही थी। कुछ देर बाद वो उठी और भारी कदमों से चलते हुए आईसीयू के डोर के पास आई। इनाया बाहर ग्लास विंडो से अंदर झांकने लगी। आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, जो हल्का सूजा हुआ भी लग रहा था। एक दिन में उसकी आंखों की चमक, चेहरे का नूर बस गायब हो गया था। कुछ बचा था कि आंखों में नमी, अजीब सा सूनापन, दिल पर बोझ, चेहरे पर दुख और मायूसी के गहरे निशान। इनाया रात भर सोई नहीं थी। जिंदगी में जो तबाही मची, उसके बाद नींद भी जैसे उससे रूठ सी गई थी। वो खामोशी से बस अंदर लेटे मानव को देखे जा रही थी। दिल में एक टीस सी उठी। उसकी इस हालत की जिम्मेदार वो खुद को मान रही थी। जब जब वो मानव को देखती, उसका ये गिल्ट और बढ़ता जाता। अंदर मानव के साथ नर्स थी। दिल तो इनाया का भी बहुत था कि अंदर जाए, मानव के पास बैठे, उससे बात करे, माफ़ी मांगे, लेकिन ना तो उसमें मानव का सामना करने की हिम्मत थी और ना ही उसे इजाज़त थी। एना बेटा, तुम रात भर से ऐसे ही बैठी हो, जाओ हाथ मुँह धोकर आओ, मैं चाय लेकर आती हूँ। अनीता जी की सौम्य सी आवाज़ इनाया के कानों में पड़ी और उसकी चंद्रा टूटी। अनीता जी उसके साथ बिल्कुल नॉर्मल थी, पहले जैसे ही उसका ख्याल रख रही थी, जिसे देखकर इनाया का गिल्ट थोड़ा और बढ़ गया। उसने सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। उसने तो अनीता जी की तरफ देखा तक नहीं था। अनीता जी को कुछ अजीब ज़रूर लगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाई। इनाया वॉशरूम में आई और मिरर के सामने खड़ी हो गई। कल कितने अच्छे से तैयार होकर पार्टी में गई थी और अब इस बिखरी बिखरी सी हालत में उसे अपना खुद का वजूद बेगाना सा लग रहा था। बिखरे बाल, सूजी लाल आंखें, मुरझाया हुआ पीला पड़ा चेहरा, रूखे होंठ, अस्त व्यस्त सी साड़ी जिस पर कई सिलवटें मौजूद थीं और थोड़ी गंदी भी हो गई थी। कुछ भी नहीं था इस वक्त उसके पास, ना फोन, ना पर्स, ना पैसे। बस एक कार्ड था जो उस गन वाले आदमी ने उसे दिया था, और इनाया ने उसे लिया भी सिर्फ इसलिए था क्योंकि मानव को इलाज की जरूरत थी और बिना पैसे के उसे सही इलाज मिलना मुमकिन नहीं था। इनाया की नजरें उसकी मांग में मौजूद सिंदूर पर जा ठहरी, जो फैल गया था। गले में उसकी आई की लॉकेट में उलझा वो मंगलसूत्र, जो अभी भी उनके रिश्ते की निशानी के तौर पर उसके वजूद से जुड़ा था। इनाया को अचानक ही वो डिवोर्स पेपर्स याद आ गए, वो फोटोज जो उसने कल रात मजबूरी में खिंचवाई थीं। सोचकर ही उसका मन खिन से भर गया। आंखें छलक आईं और उसे घुटन सी महसूस होने लगी। इनाया की आंखों से आंसू बरसने लगे। अचानक ही उसकी आंखों के आगे मानव का धुंधला अक्स उभरा और उसने गमों के गहरे समुद्र से अपने वजूद को खींचकर बाहर निकाला। अपने जज्बातों को दिल में दफनाने के बाद उसने बड़ी ही बेरुखी से अपनी आंखों को रगड़कर आंसू साफ किए, चेहरा हल्का झुकाया और अंजुरी में पानी भरकर दो चार बार चेहरे पर छींटे मारे, अपना चेहरा साफ किया और वहीं दीवार से टिककर आंखें बंद करके खड़ी हो गई थी। उसकी आंखें जल रही थीं, चेहरे के साथ साथ पूरा शरीर भट्टी जैसे तप रहा था। वो शायद खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मनु, मैं यहाँ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी तुझे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। कुछ नहीं होगा तुझे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। ये इनाया की आवाज़ थी जिसमें झलकती घबराहट, डर, भारीपन उसके दिल का हाल बयां कर रहा था। ये शब्द उसने तब कहे थे जब इनाया मानव को हॉस्पिटल लेकर आ रही थी। मानव के अनकॉन्शियस माइंड में इनाया के शब्द गूंज रहे थे। मानव की पलकें हल्की हल्की कांपने लगी, जो कि पलकों के आगे कुछ धुंधली तस्वीरें घूमने लगी। नित्या के मैसेज के बाद घर से निकलना, ट्रैफिक, उसके चेहरे पर कुछ स्प्रे हुआ, सिर पर चोट, वो धुंधला अक्स, आंख खुली तब खुद को एक रूम में पाया। भागने की कोशिश की तभी उन गुंडों ने उसे मारा, फिर उसे कुर्सी से बांधकर वीडियो बनाई। दौरान मानव ने उनकी बातें सुनी थी और वो तभी समझ गया था कि इनाया को अपने जाल में फंसाने के लिए वो उसका यूज करने वाले हैं। तभी उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी वहां से निकलने की, लेकिन फिर उसे जबरदस्ती पकड़कर उसे इंजेक्शन लगा दिया। उसके बाद की भी कुछ बातें, जैसे इनाया का वहां आना, उसके बाद जो हुआ, सब उसे धुंधला धुंधला याद आ रहा था। उसका दिमाग उस लम्हे में जाकर रुक गया जब इनाया को उसकी साड़ी उतारने कहा गया था और मजबूर होकर उसने अपना आंचल हटाया था। ये तस्वीर बिल्कुल साफ हुई। उसके साथ मानव में चीखते हुए झटके से अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उसकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल सकी। आंखें खोलते हुए नजर सीधे सीलिंग पर पड़ी। मानव का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक था। उसकी सांसें तेज हो गईं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। धीरे धीरे वो सेंसेस में लौटा। एक बार फिर उसकी आंखों के आगे जो हुआ सब घूमने लगा। इनाया, पहला शब्द उसके होंठों से निकला। आवाज कमजोर थी और बेहद धीमी। उसकी बेचैन निगाहें इनाया की तलाश में घूमने लगी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। नर्स ने जब उसकी खुली आंखें देखी तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। डॉक्टर्स भागे भागे आए और मानव का चेकअप करने लगे। इस दौड़ भाग को देखकर बाहर खड़ी अनीता जी घबरा गई। किसी अनहोनी के डर से उनका दिल दहलाने लगा। वो दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर झांकने लगी, लेकिन उन्हें कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। काकी, क्या हुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? सब ठीक है ना? मानव तो ठीक है ना? उन्हें इतना घबराया हुआ देखकर इनाया के चेहरे पर भी चिंता, डर और घबराहट के भाव उभर आए।
पता नहीं बेटा, हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ दिख भी नहीं रहा। अचानक सब डॉक्टर्स भाग कर आए और अंदर चले गए। हमारा तो दिल घबरा रहा है। अनीता जी अब तक शांत थीं, लेकिन आखिर माँ थीं। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उनके दिल पर क्या गुजर रही थी, बस वही समझ रही थीं। वो पैनिक करने लगीं। डर तो इनाया भी गई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और साथ ही अनीता जी को भी समझाने लगी। काकी, आप चिंता मत करो, मनु को कुछ नहीं होगा। आपने ही तो कहा था कि मनु ने आज तक किसी के साथ गलत नहीं किया, तो उसके साथ भी बप्पा कुछ गलत नहीं करेंगे। आप यहाँ बैठिए, खुद को शांत कीजिए, ये पानी पीजिए, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ। इनाया ने अनीता जी को चेयर पर बिठाया और उनके लिए पानी ले आई। अभी अनीता जी ने ग्लास होठों से लगाया ही था कि डोल खोला और एक डॉक्टर बाहर आया। उनके साथ साथ इनाया भी उठकर खड़ी हो गई। दोनों की सांसें थम-थम कर चल रही थी। दिल घबराहट के मारे जोरों से धड़क रहा था और आंखों में उम्मीद के साथ डर भी था। टू बी कंटिन्यूड।